हम जब भी स्मरण करते हैं तो सबसे पहली बाधा तो हमारी ये आती है, या यूं कहें पहली शिकायत तो हमारी ये होती है कि स्मरण करना बड़ा ड्राई जैसा लगता है, उसमें एक रस आना चाहिए, एक प्रेम आना चाहिए, वो नहीं आता। ये आम शिकायत सुनने को मिलती है। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है कि हम मंत्र को मंत्र करके स्मरण करते हैं कि ये लैंग्वेज है और एक मंत्र है और उसको हम मौन होकर याद कर रहे हैं या रिपीट कर रहे हैं, जबकि इस महामंत्र की महिमा की वाणी में सबसे पहला ही जो दोहा है वो कह रहा है कि त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दातार जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार। जो इसका प्रेम से स्मरण करेगा उसका अपार कल्याण होगा। अपार कल्याण का मतलब होता है मोक्ष। यहां तक कि इस मंत्र के स्मरण से आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। लेकिन कंडीशन वहां लगी हुई है जो सिमरे नित प्रेम से, जो इसका निरंतर प्रेम से सिमरन करता है। प्रेम करना तो हम सभी जानते हैं, परंतु यह पता नहीं कि मंत्र से कैसे प्रेम हो सकता है। प्रेम हम करते हैं जिंदा चीजों से, जो लाइव चीजें हैं उनसे प्रेम करते हैं। हम पशुओं से प्रेम कर सकते हैं, पक्षियों से भी प्रेम करना जानते हैं, मनुष्यों से तो हम जानते ही हैं प्रेम करना, लेकिन मंत्र से कैसे प्रेम करें? तो इसीलिए उपनिषद कह रहा है कि नाम ब्रह्मेति उपासते। नाम को अर्थात मंत्र को ब्रह्म जानकर उपासना करनी चाहिए। तो नाम खुद ईश्वर है ये जानकर, ये मानकर नहीं, ये रियलिटी है, ये तो उपनिषद ऐसी बात क्यों लिखता। महाराज जी की वाणी भी कह रही है एक नाम गुरु करी बख्शीश पल पल सिमरे सो स्वरूप जगदीश। बड़ा स्पष्ट कह रही है वाणी कि वो ईश्वर का स्वरूप है, नाम नहीं है, वो मंत्र नहीं है, वो चाहे वो गुरु से डायरेक्ट प्राप्ति हुआ नाम हो या फिर जैसे महामंत्र है गुरु की सारे जगत के लिए परमिशन है, वो समाधि हालत में प्रकट हुआ है, वो भी उसी प्रकार ईश्वर रूप है जिस प्रकार गुरु खुद नाम देता है तो वो ईश्वर रूप होता है या नाद रूप होता है। तो इसीलिए जब तक आपका मंत्र के प्रति ईश्वर भाव मन में नहीं आता आपका सिमरन ड्राई ही रहेगा, खुश ही रहेगा। ऋषियों ने सब जगह यही बात कही है। अब देखिए महर्षि रमण कहते हैं मंत्र गुरु आत्मा कुंडलनी एक ही चीज है, मतलब एक ही चीज के चार रूप हैं, एक ही ब्रह्म जो है विभिन्न रूपों में अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है, अपने आप को अवतरित कर रहा है। कोई गुरु को भी मनुष्य समझ ले तो उसकी भी अवज्ञा करेगा, फिर वो उसके साथ भी दुर्व्यवहार करेगा। वो जो गुरु को ईश्वर समझ ले वो गुरु की बात का पालन करेगा, अपना कल्याण करेगा। जैसे कि महर्षि रमण के आश्रम में जब पूरे आश्रम का निर्माण नहीं हुआ था, एक कमरा बना था जिसमें महर्षि रमण बैठा करते थे। एक दिन रात को चोर आए, वहां रखा क्या था? उन्होंने कहा कि चाबियां दो, जो भी एक अलमीरा थी वह ताला पड़ा हुआ था उसमें, चाबियां दो। तो महर्षि रमण ने इशारा किया, जो उनके शिष्य थे वहां सोए हुए थे, कि भाई इनको दे दो। उन्होंने सब देखा चारों तरफ तलाश करके, कुछ मिला नहीं उनको। तो उसमें से एक उनके साथी ने, एक चोर ने उनके डंडा जो है जांघ पर मार दिया महर्षि रमण के, और चले गए। तो वो महर्षि हैं, अवतार हैं, ईश्वर का मैनिफेस्टेशन है, लेकिन पिटाई उनकी हो रही। तो हमारे और उनके देह में अंतर क्या है? हमारे उनके देह में बस अंतर कोई है तो श्रद्धा का अंतर है बस। मैं किस दृष्टिकोण से उसको देख रहा हूं और दूसरा व्यक्ति किस दृष्टिकोण से उसको देख रहा है। उनके शरीर में हमारे शरीर में कोई भेद नहीं है, वो भी पांच तत्व का बना है, हमारा देह भी पांच तत्व की बनी है। हमारी देह भी नाशवान है, उनकी देह भी नाशवान है। हमारी देह भी बूढ़ी होती है, उनकी देह भी बूढ़ी होती है। हमारी देह रोगी होती है, उनकी भी रोगी होती है। महर्षि रमण ने तो जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, लोगों का कल्याण ही कल्याण किया, लेकिन उनको कैंसर हो गया। तो जैसा मेरी देह का प्रारब्ध है, ऐसी सत्पुरुष की देह का भी प्रारब्ध हुआ करता है। जो उसके शरीर से होना है होके रहेगा, ना वो उस बात की इच्छा करते कि ऐसा हो जाए, ना कोई उनके देह में परिवर्तन होता है। जैसा प्रकृति ने दिया है, जैसा प्रारब्ध ने रचना की है, वैसा ही प्रभु होकर में उनकी देह भी चल रही। तो सवाल यही उठता है कि एक व्यक्ति गुरु की देह को ईश्वर की देह समझता है, इस देह से ईश्वर मुझसे बात कर रहा है, तो किस एंगल से देखता है उसको, किस प्रेम से देखता है, किस श्रद्धा से देखता है? तो देह वही होते हुए भी एक चोर उस देह की पिटाई करता है, और एक व्यक्ति उस देह को ईश्वर जानकर, उस देह के द्वारा जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसको ईश्वर का मार्गदर्शन जानकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। कितना बड़ा भेद हो गया। तो भेद कहां है? भेद देह में है या दृष्टिकोण में है? बस यही बात समझने की कि मंत्र सब जाप करते हैं, लेकिन मंत्र को ईश्वर करके कौन देख रहा है उसको? मंत्र को गुरु करके कौन देख रहा है कि ये मंत्र नहीं है, ये अंतर्यामी गुरु है। जिस गुरु के लिए मैं संसार में भटक रहा हूं, वो मंत्र रूप में अंदर मेरे विराजमान है, और निरंतर मैं चाहूं तो उसका संग कर सकता हूं सिमरन के द्वारा। तो बताइए मुझे, जब मंत्र को आप गुरु करके देखोगे, ईश्वर करके देखोगे, तो आपके मन में कितना प्रेम होगा? जरा विचार करके देखो। इसलिए कई बार महामंत्र की महिमा की जब क्लास होती है, तो उसमें एक उदाहरण मैं दिया करता हूं। मैं कि देखो, यदि साधारण शब्दों में समझना हो तो कोई भक्त है, कृष्ण का पुजारी है, कृष्ण की मूर्ति उसके सामने रखी है और वो उसकी उपासना करता है। भाग्यवश यदि साक्षात कृष्ण उसके सामने आके बैठ जाएं, उस पर कृपा करने के लिए, मान लिया उसको आधे घंटे का समय मिला हुआ है, विचार करो कृष्ण उसके सामने साक्षात बैठे हों, तो उसका मन संसार में भागेगा क्या? वो यही सोचता रहेगा, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि प्रभु मेरे पास ही बैठे हुए हैं। आधा घंटा उसको पता ही नहीं लगेगा कि कहां चला गया, कहां बीत गया। तो वही प्रेम मेरे अंदर होना चाहिए मंत्र जाप जब करता हूं तो, प्रभु तुम साक्षात मेरे अंदर विराजमान हो, अब मैं मन से आपका संग कर सकता हूं, मैं संसार की वस्तुओं का संग मन से ही करता हूं। आप मेरी बात सुन रहे हैं, मन आपका कहीं और पहुंच जाए, दो मिनट के लिए आपको याद आ जा रहे घर का ताला तो खुला रह गया, मैं तो उसको बंद करके ही नहीं आया, तो कान सुन रहे हैं फिर भी आप नहीं सुन रहे, तो मन यहां पर है तो सुन रहे हैं आप, मन यहां नहीं है तो सुन भी नहीं रहे आप। तो इंद्रियों का फंक्शन भी तभी पूर्ण होता है जब मन उनके संग लगा होता है। तो इसीलिए जब आपके अंदर मंत्र के प्रति ईश्वर भाव है, जो कि वास्तव में होना चाहिए क्योंकि वो ईश्वर ही है, तो आपका मन ईश्वर का संग कर रहा है, ईश्वर के संग लगा हुआ है। ये कितने प्रेम के क्षण हैं, कितने भाग्य के क्षण हैं, जरा विचार करके देखिए। ये मैं कोई फॉल्स एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं आपको, एजम्पशन के लिए नहीं कह रहा हूं, मान लो ये बात, ये रियलिटी है, इसको जान लो। इसीलिए मंत्र कोई साधारण चीज नहीं है। देखो रामायण में भी तुलसीदास जी लिख रहे हैं मंत्र के बारे में, देखो मंत्र विज्ञान हर जगह है, वहां तुलसीदास जी कह रहे हैं मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब। अर्थात मंत्र यद्यपि बड़ा छोटा सा होता है, मंत्र तो छोटी सी ही चीज है, लेकिन उसके वश में क्या क्या है, जासु बस। अब देखिए मंत्र यदि भी छोटा सा होता है लेकिन उसके वश में क्या क्या है, विधि हरि हर सुर सर्व। विधि कहते हैं ब्रह्मा को, हरि कहते हैं विष्णु को, हर कहते हैं महेश को। एक सृष्टि की उत्पत्ति करता है, एक सृष्टि का पालन करता है, एक सृष्टि का विध्वंस करता है। इस सृष्टि में जो तीन ताकतें हैं ये तीन देव के रूप में कही जाती हैं, और सुर सर्व और सारे देवता, चाहे इंद्र देवता हो या जो भी आप देवता समझते हैं, सारे देवता इस मंत्र के अधीन है, मंत्र के वश में है। तो मंत्र क्या है फिर, जब इस ब्रह्मांड के सारे देवता मंत्र के वश में है तो मंत्र क्या है फिर? तो उपनिषद कह रहा है नाम ब्रह्मेति उपास्ते, नाम को ब्रह्म जानकर उपासना करना चाहिए, क्योंकि नाम ब्रह्म है, इसलिए सारे देवता उसके अधीन है। कोई साधारण सी चीज है कोई? तो हम अपनी बुद्धि को जब शास्त्र के अनुसार बदलते हैं या अपनी बुद्धि में निश्चय शास्त्र के अनुसार लाते हैं, तब हम सही सोचते हैं और सही निश्चय करते हैं। उस सही सोच सही निश्चय के साथ जब हम मंत्र का जाप करते हैं, तब वो मंत्र हमारे लिए कल्याणकारी होता है। तो ऐसे पूर्ण सिद्ध मंत्र का पता लग जाना, उस पर श्रद्धा का आ जाना, ये मनुष्य के जन्म का सबसे बड़ा भाग्य है। जितने भाग्य हो सकते हैं उसके, उसमें सर्वोच्च भाग्य ये है कि उसको एक सिद्ध मंत्र का पता लगा है और उसका उस पर विश्वास आ गया है। किसी को एक अरब की संपत्ति भी मिल जाए, इस मंत्र की कीमत के आगे वो कूड़ा है, इस मंत्र की कीमत के आगे वो बिल्कुल कूड़ा है, वो तो तेरा नाश कर देगी और ये मंत्र तेरा कल्याण कर देगा। दोनों में इतना बड़ा भेद है दिन और रात का। तो जो चीज हमको सहज रूप में मिल जाती है हम उसकी क्या कीमत समझते हैं ये हम जानते हैं, इसीलिए सिमरन में हमारा रूखापन बना रहता है, उसी कीमत का ही नहीं पता हमको, अनजाने में हीरा हाथ लग गया है। महाजी भी कहते थे प्रेमी गुरु तुमको सस्ते में मिल गए हैं, यदि जंगलों जंगलों खोज करते ना तब पता लगता है कि गुरु की कीमत क्या है, इसलिए गुरु की बात तुम अवज्ञा करते हो, सारी बातें भी महाराज जी के नहीं मानते। कई शिष्य महाराज जी कैसे थे जिन्होंने कहा था महाराज जी मैं मांस नहीं खाऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, पिक्चर नहीं देखूंगा, कई वायदे किए महाराज जी के आगे, सिगरेट नहीं पीऊंगा, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात इंद्रियों ने जोर मारा फिर वो ऐप शुरू कर दिए। तो गुरु तो अंतर्यामी है, उससे क्या छुपा होता है। उन्होंने कहा प्रेमी तुमने वायदा किया था इनसे लेकिन उसका तुमने पालन नहीं किया है, तो अब बताइए हम गुरु को क्या समझते हैं, गुरु को क्या समझते हैं? इंसानी समझ रहे हैं ना, गुरु मिलने के बाद भी उसको इंसानी समझ रहे हैं। जिसको यदि ये हर समय होश हो कि गुरु ब्रह्म है, ये मेरा ईश्वर से वास्ता, ईश्वर से वास्ता पड़ा है, ईश्वर से मिलन हुआ है, ईश्वर तो मेरी देह का भी मालिक है, मेरी सृष्टि का भी मालिक है, ये यदि नाराज हो गया तो मेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, तो उसके अंदर भय पैदा होगा। महाज कहते हैं प्रेमी भय से अपने कल्याण का भाव पैदा होता है, अपने जीवन को सफल करने का विचार पैदा होता है, इसलिए वो जो विचार पैदा होता है उस विचार पर वो चल पड़ता है। इसलिए गुरु का भय ईश्वर का भय होना लाजमी है। इसलिए महाराज जी कहते थे कि मौत का भी भय होना चाहिए अंदर, कि आज जीवन है कल छिन जाएगा, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट काम है मैं जल्दी करूं, कल पे नहीं टाल दूं इसको, मैं एक साल बाद शुरू करूंगा। तो हम अपनी अज्ञानता में ऐसी ही मूर्खता करते हैं, गुरु की बात भी पढ़ लेते हैं सुन भी लेते हैं, कहते हैं हम भयभीत काय को हो, हमें तो निडर होना चाहिए, लेकिन वो क्यों भय की बात कर रहा है वो तो सीखो। लोगों से डरो ये नहीं कह रहा है, वो कह रहा है ईश्वर से डरो, गुरु से डरो। ताकि गलती करने से बच जाओ, गुरु के महत्व को समझो, उसकी कीमत को समझो। इसीलिए जो ये सिद्ध मंत्र होते हैं, जो समाधि में प्रकट होते हैं, ये लाइव गॉड हैं, चेतन ईश्वर हैं ये, इसमें चेतनता है। जो इसका जाप करेगा उसका कल्याण होगा ही होगा, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। यदि आपके अंदर श्रद्धा और प्रेम पूरा है तो याद रखिए गुरु की कृपा भी पूरी है आपको, आप उस कृपा के हकदार हैं, वो मिलेगी आपको। तो गुरु की प्रथम कृपा तो मंत्र रूप में हुई है, दूसरी कृपा तब होगी जब अंदर गुरु शक्ति प्रकट होगी इस मंत्र के जाप से, उस गुरु शक्ति का बोध अंदर होगा आप, जिस शक्ति को गुरुदेव खुद बचपन से ही अनुभव किया करते। तो इस मंत्र को हम साधारण ना समझें, यही कीमत समझे हैं जो शास्त्र बता रहे हैं। पल पल सिमरे सो स्वरूप जगदीश, गुरुवाणी ही कह रही है ना आपसे, जिस गुरु का मंत्र जाप कर रहे हो वो गुरुवाणी ये कह रही है आप, पल पल सिमरे सो स्वरूप जगदीश। ये किसी कारीगर की बनाई हुई मूर्ति नहीं है, मुझको पता है ये मूर्ति किसी कारीगर ने बनाई है, मैं एज्यूम कर लेता हूं ईश्वर ऐसे ही है या ऐसे ही थे, उनकी कल्पना क्या करता हूं मूर्ति के द्वारा, लेकिन मंत्र के बारे में ये कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है। वो जीवित ईश्वर है, वो चेतन मंत्र है, वो उसमें चेतना है। इसीलिए मंत्र को हर समय याद रखने की बात कही जाती है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जिस समय संसार के काम करते हो उस समय एक हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो, एक हाथ से संसार के काम करते रहो। मतलब यह है कि मन के एक कोने में ईश्वर की याद बनी रहनी चाहिए। उनका ठीक उसी प्रकार जैसे प्रकार घर की दासी किसी के घर नौकरानी हो, उसके बेटे को वो खिला रही हो तो बड़े प्रेम से खिलाती है, कर्तव्य समझकर खिलाती है कि इसको चोट ना लग जाए, ये रो ना जाए, लेकिन उसके मन में सदैव ये बात बनी रहती है कि मेरा अपना बेटा तो घर पर खेल रहा है, उसका ध्यान बेटे पे लगा ही रहता है, वो नहीं हटता वहां से। पूरी तरह कर्तव्य पालन करने के बाद भी उसका ध्यान वहां से नहीं हटता, क्योंकि उसको उससे प्रेम है, उसकी निज वस्तु है, वो अपनी देह का अंग है वो। तो ईश्वर तो मेरी देह का मालिक है भाई, उसको मैं भूल जाऊं? उस बेटे से ज्यादा कीमती है ईश्वर, वो तो इस देह का मालिक ही है, उसके बिना तो ये देह चल ही नहीं सकती। तो ऐसा परमेश्वर मैं उसको भूल जाता हूं, पैसे के चक्कर में, काम के चक्कर में, इसलिए भूल जाता हूं क्योंकि मुझको उसको उससे प्रेम नहीं, उसका महत्व मुझे पता नहीं, इसलिए भूल जाता हूं। मुझे पैसे का महत्व मालूम है, इस नाशवान देह का महत्व मालूम है, जो कितने पाप मुझसे करवाती है। संसार में सारे पाप इस देह से तो होते हैं, कितने पाप करवाती है, इससे तो इतनी लगन। और जो ईश्वर मोक्षदायक है, जो आनंद रूप है, जो ज्ञान रूप है, उसकी याद ही नहीं आती मुझे। कहां मेरा विवेक खड़ा हुआ है, मेरी समझ कहां खड़ी हुई है? तो हमारी ये जो गहरी अज्ञानता है, यही हमको सिमरन में बाधा पहुंचाती है, यही सिमरन में प्रेम पैदा नहीं होने देती। तो इसलिए इन बातों का ध्यान यदि बना रहे तो आप देखिए कि किस प्रेम से आप सिमरन करोगे। मन की आदत पड़ी हुई है संसार को याद करने की, इसलिए प्रेम गायब होगा आपका, ये मत भूलिए। इसलिए जैसे ही मन में रूखापन आए या मन में संसार याद आए, तो फिर इस प्रेम की कहानी को याद कर लीजिए, फिर इस बात को ध्यान कर लीजिए, मैं ईश्वर के पास था, ईश्वर मंत्र रूप में मेरे मन के अंदर विराजमान थे, फिर क्या हो गया, मन संसारी तरफ क्यों भाग रहा है? क्योंकि बुद्धि ने संसार को बड़ा महत्व दिया था कि संसार ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, संसार के भोग ही सब कुछ है। इतना महत्व मैंने जो मन में बिठाया था, तो वो महत्व एकदम से जाने वाला नहीं है, उसके जाने में वक्त लगेगा। जो आदतें पड़ी हुई हैं मन की, उनको बदलने में समय लगेगा, इसीलिए घबराना नहीं चाहिए। 5 साल भी लग जाए मन को सीधा होने में, वो भी कम है, वो भी कम। इसीलिए इसको अभ्यास कहते हैं कि संसार से हटाकर ईश्वर में ध्यान लगाने की कोशिश करना, इसका नाम है अभ्यास, प्रैक्टिस। तो अभी आप सिमरन नहीं कर रहे हो, सिमरन की प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। तो अभ्यास में यदि लापरवाही करोगे, मान लिया साइकिल सीख रहे हो, तो साइकिल सीखने में यदि ध्यान से सीखोगे तो चोटें कम आएंगी, साइकिल कम गिरेगी। यदि लापरवाही से चलाओगे, लापरवाही से सीखोगे तो बार बार गिरोगे, चोटें ज्यादा खाओगे, तकलीफ ज्यादा होगी। तो उसी प्रकार अभ्यास भी हमने ठीक से करना चाहिए। जो बताया जा रहा है कि जो सिमरे नित प्रेम से, तो प्रेम से ही मैंने सिमरन करना है। प्रेम आएगा कहां से? इसी भाव से, इसी विचार से प्रेम आएगा। कि तुलसीदास जी कह क्या रहे हैं कि सारे देवता इस मंत्र के अधीन है। और ये मन, बिगड़ा हुआ मन, इस मंत्र के वश में आ जाता है, जिसको लिए दोहा कह रहा है, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्ब, महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब। जिस प्रकार एक बिगड़ा हुआ हाथी, कितना बड़ा हाथी होता है, बिगड़ जाए तो आदमी को छोड़ेगा नहीं, सामने जो आ जाए उसको तहस नहस कर देगा। लेकिन छोटा सा अंकुश होता है, लंबी सी छड़ी होती है जो हाथी को ड्राइव करता है, उसके आगे छोटी सी कील होती है, उसमें अंकुश कहते हैं उसको, वो उसके मस्तक में चुभोता है, तो इतना बड़ा बिगड़ा हुआ हाथी उसके वश में आ जाता है। तो ये मंत्र में वो शक्ति है, जैसे बिगड़े हाथी को अंकुश संभाल लेता है, उसी प्रकार इस बिगड़े मन को, जो हाथी से भी बड़ा बिगड़ा हुआ है, इसको ये मंत्र संभाल लेता है। लेकिन जो इसका इस्तेमाल करता है अंकुश का, उसको विश्वास होता है कि इस अंकुश से हाथी वश में आ जाएगा। तो मेरे अंदर फेथ होना चाहिए कि मैंने ईश्वर का संग किया है, सिद्ध मंत्र का संग किया है, ये मन वश में आएगा ही आएगा। इसलिए मैंने उस चीज को सीखना है, उसका उपयोग सीखना है। तो मन का उपयोग यही है कि मंत्र को ईश्वर जानकर मैं पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण प्रेम से इस मंत्र को संसार का सबसे कीमती अस्त्र जानकर मन को सीधा करने के लिए मैं उसका इस्तेमाल करूं, उसका उपयोग करूं। तो जब मनुष्य मंत्र को ईश्वर जानकर, चेतन मंत्र जानकर, प्रेम से उसके अंदर याद करता है, तब धीरे धीरे उसके मन के अंदर जो संसार की वासना है, संसार के निश्चय हैं, वो टूटते हैं, ढीले पड़ते हैं, कमजोर पड़ते हैं। और एक दिन हमारे जीवन में ऐसा आ जाता है कि मंत्र की शक्ति अंदर प्रकट हो जाती है और फिर हम उस शक्ति का संग करने लायक बन जाते हैं। उस शक्ति का ही नाम नाद है, उस शक्ति का ही नाम कुंडलिनी है। फिर वो अंतर्यामी गुरु प्रकट हो जाता है। मंत्र की तुलना में उस पर ध्यान लगाना सरल होता है, क्योंकि इसमें एफर्ट करना पड़ता है। फिर ऐसा हो जाता है, जैसे कि मान लिया अभी तो आप बांसुरी बजा रहे हो, बांसुरी बजाने में आपको एफर्ट करना पड़ता है। फिर आप बांसुरी की आवाज सुन रहे हो, तो सुनने में एफर्ट नहीं चाहिए, केवल ध्यान लगाना पड़ता है कि कहां से आवाज आ रही है। तो ठीक उसी प्रकार, ये तो एक एग्जाम्पल है, ठीक उसी प्रकार अंदर जब मंत्र की कृपा से, मंत्र रूपी गुरु की कृपा से जब गुरु शक्ति रूपी अंदर कृपा होती है, तब ये जीव का फिर अगला भाग्योदय होता है। फिर इसके अंदर एक पक्का निश्चय आता है कि गुरु ने जो कुछ भी कहा है सब ठीक, लेकिन प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना। मैंने यदि डॉक्टर बनना है तो 24-25 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, उसके बाद ही तो डॉक्टर बनूंगा ना। इसीलिए संसार में भी हम कोई कला सीखें, कोई चीज प्राप्त करना चाहें, तो कितना लंबा एफर्ट करना पड़ता है। और ये वो चीज है जो मौत के संग भी, मौत के बाद भी आपसे छूटेगी नहीं। ये वो कमाई है जो मौत के बाद भी आपसे छूटेगी नहीं। जिस प्रकार महाराज जी कह रहे हैं अपने जीवन के बारे में, जब भगत जी ने उनसे पूछा महाराज जी आपके गुरु कौन है, तो महाराज जी ने कहा प्रेमी परमेश्वर खुद ही इनका गुरु है। जब 3 वर्ष की आयु थी तब इनको अंदर से बोध था कि ईश्वर क्या है, संसार क्या है। तो अंदर ईश्वर का उनको अनुभव था। कहां से आया वो अनुभव? वो पूरी जन्म की साधना थी। अंदर का ईश्वर जागृत था, वो बचपन से ही मिल गया उनको। तो ना जीव की मृत्यु होती है, ना मन की मृत्यु होती है, ना इंद्रियों की मृत्यु होती है। ये सूक्ष्म देह जीव के संग ही चली जाती है, और जो कुछ भी कमाई इसके मन में इकट्ठी है वो सब इसको बचपन से ही प्राप्त हो जाती है। यदि तुझको ईश्वर से प्रेम करने का तेरा स्वभाव बना हुआ है, मन के अंदर ईश्वर का प्रेम है, तो बचपन से ही तेरे मन के अंदर ईश्वर का प्रेम होगा, बचपन से ही होगा, रेडीमेड होगा। सारे भक्तों की यही स्थिति होती है, देख लो आप, बचपन से ही प्रेम लेके आते हैं। और जो हिंसक प्राणी है बचपन से ही उसके मन में हिंसा होगी। बच्चे दिखे होंगे, छोटे से जानवर को देखेंगे फट से मार देंगे उसको, हिंसा बचपन से ही होती है। दूसरे के बच्चे के हाथ में चीज होगी फट से छीन लेंगे उसको और उसकी उल्टी पिटाई कर देंगे, तो हिंसा बचपन से होती है, लेके आए हो। तो इसलिए वो कमाई करो जो साथ जाने वाली। तो पहली जो बाधा है हमारी स्मरण में वो इस प्रेम का अभाव है, हमारी अज्ञानता के कारण। जो वाणी कह रही है वो हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, उसको समझने को तैयार नहीं। तो वाणी जब कह रही है कि कलह कलेश सब दूर होए, पाए ज्ञान तत् योग, मंगत तत् अक्षर नित गाइये, प्रभु दर्शन होए संयोग। ये तत् अक्षर हैं, तत् कहते हैं ब्रह्म को, ईश्वर को। ये अक्षर साधारण अक्षर नहीं है, ये ईश्वर रूप अक्षर है। इसीलिए ईश्वर रूप इस मंत्र को जब मैं याद करता हूँ, मनन करता हूँ, इसका मौन होकर स्मरण करता हूँ, तो मुझे अंदर प्रभु का दर्शन प्राप्त होता है, उनके दर्शनों का संयोग प्राप्त होता है। और फाइनली क्या होता है, कलह कलेश सब दूर होए, मन के सारे कलह कलेश खत्म हो जाते हैं। तुम संसार में कुछ भी प्राप्त क्यों ना कर लो, कलह कलेश बढ़ भले ही जाए, आदतें तुम्हारी बिगड़ भले ही जाए, साफ नहीं हो सकती। लेकिन वाणी लिखित गारंटी दे रही है आपको, कलह कलेश सब दूर होए, सारे कलह कलेश तेरे खत्म हो जाएंगे और पाए ज्ञान तत्व। ज्ञान तत्व को ब्रह्म कहते हैं, उस ब्रह्म का अनुभव तुझको होगा, उस ब्रह्म में स्थिति तेरी होगी, तू ब्रह्म रूप ही हो जाएगा। इसीलिए जो पहली बाधा हम खुद दूर कर सकते हैं, इस मंत्र के प्रति जो हमारा भाव बना रखा है उसको चेंज करें, प्रेम भाव उसके प्रति आना चाहिए, और जब सिमरन करने बैठे तो ये समझे कि मेरा साक्षात ईश्वर के साथ संग हो रहा है। बस फिर देखिए कि आपकी नींद भी भाग जाएगी, आपकी बेचैनी भी भाग जाएगी, जो मन का रूखापन था वो भी भाग जाएगा, इसमें एक रस आएगा, एक प्रेम आएगा। अगली जो बाधा होती है, एक और बाधा आती है कि हमारे अंदर ईश्वर परायणता नहीं, हम अपने एफर्ट पर और संसार पर निर्भर करते हैं या संसार की वस्तुओं पर निर्भर करते हैं। इसीलिए जब सिमरन करने बैठते हैं तो संसार की बातें, संसार के क्लेश, संसार के नफा नुकसान, संसार का घटनाक्रम, ये हमको याद आता रहता है और मन में बेचैनी बनी रहती है, उस बेचैनी में ये मंत्र याद नहीं आता। इसीलिए सारे शास्त्र एक सूत्र दे रहे हैं, वो कहते हैं कि ये पूरी की पूरी सृष्टि प्रारब्ध के अधीन है। इस संसार में जो घटनाक्रम घटने वाला है वो घटेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। मेरी देह से भी जो कर्म होने हैं, जो घटनाक्रम मेरी देह के साथ घटना है वो भी घटेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। आपके जीवन में जो सुख आने हैं, जो दुख आने हैं, वो आके रहेंगे, आप कितनी भी पूजा कर लो वो टलने वाले नहीं। इसको महाजी भावी करके कहते हैं, प्रारब्ध करके कहते हैं, या साधारण रूप में हम लोग भाग्य करके कहते हैं। लेकिन विश्वास इस पर पक्का नहीं होता किसी का, होता भी और नहीं भी होता है। इसीलिए हम उपाय ढूंढते हैं, कभी ज्योतिष के पास जाते हैं, कभी पंडित के पास जाते हैं कि कोई उपाय कर दो, ये जो कठिन वक्त आने वाला है, मेरे ग्रह जो खराब चल रहे हैं, किसी तरह इनमें सुधार हो जाए, क्योंकि ईश्वर का निश्चय हमारे अंदर नहीं, लोगों पर निश्चय बना हुआ है, ईश्वर पर निश्चय नहीं बना हुआ है। तो इसी कारण मेरे अंदर ये भाव बना रहता है, जब सिमरन करने बैठता हूं कोई चीज बिगड़ने वाली है तो सोचने लगता हूं, अरे एक उपाय मेरे मन में आ रहा है, नहीं उसी को सोचने बैठ जाता हूं कि हाँ वो काम कैसे सीधा होगा, सिमरन तो बाद में हो जाएगा, पहले उपाय सोच लो। ये नहीं सोचता कि मेरे उपाय सोचने से क्या होगा, जो प्रभु ने रचना रच रखी है वो होकर रहेगी, मैं प्रभु की याद क्यों ना करूं। कम से कम दुख का वक्त आएगा उस समय धैर्य तो बना रहेगा, मैं तो होश तो रहेगा, ये जो दुख आया है मेरे जीवन में ये प्रभु का भेजा हुआ है, प्रभु ने क्यों भेजा, ये मेरा पास्ट कर्म था, कोई मेरा पाप कर्म था जो दुख रूप में आज मेरे सामने आया, तो ये भोग कर ही कटेगा, बिना भोगे नहीं कटेगा। इसीलिए सत्पुरुषों का जीवन पढ़ा जाता है, उनका जीवन देखा जाता है, सर्वसमर्थ होते हैं सत्पुरुष, लेकिन प्रारब्ध को परिवर्तन करने में वो कभी भी दखल नहीं देते, जो होना है वो होकर रहेगा, वो उसको होने देते। अब देखो ना, अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि ये युद्ध तुझको करना पड़ेगा, और अर्जुन क्या समझ रहा है, मेरी इच्छा है, मैं चाहूं तो युद्ध करूं, चाहूं तो मैं ना करूं। अर्जुन की स्थिति यह है कि वो अपने आप को मालिक समझ रहा है मैं जो चाहूं करूं, जो चाहूं ना करूं। अब कृष्ण दूसरी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तेरी देह इस युद्ध करने को के लिए पैदा हुई है, ये युद्ध तुझको करना ही होगा। लेकिन अर्जुन की बात समझ में नहीं आती, तो सारा ज्ञान कृष्ण को अर्जुन को देना पड़ता है। तब उसकी समझ में आई, तब कहता है कि अब आप जो कहेंगे मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा। लेकिन यहां विचार करने की बात यह है कि अर्जुन तो चलो आप कह सकते हैं ज्ञानी था, कृष्ण का शिष्य था, लेकिन दुर्योधन कौन था? दुर्योधन की जंगा पर जब भीम ने गदा चलाई, अब मरने का जब वक्त आया उसका, तब कृष्ण उसके सामने खड़े हुए जाते, तब वो कहता है वासुदेव मैं समझता था कि मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा देव बैठा था जो मुझे गलती करने को मजबूर कर रहा हूं। जरा विचार करो, जरा जब युद्ध होना है तो दुर्योधन गलती करेगा तभी तो युद्ध होगा, और अर्जुन को वाण विद्या आएगी और वो राजघराने में पैदा होगा तभी तो युद्ध करने का मौका मिलेगा उसको। तो उसका राजघराने में पैदा होना, द्रोणाचार्य जैसा उसको धनुर गुरु मिलना और सारी वाण विद्या की शिक्षा मिलना उसको, ये सारा क्रम प्रारब्ध से बंधा हुआ है। जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक का ये प्रारब्ध चक्र है। कृष्ण जिसको जानते हैं अर्जुन उसको नहीं जानता, लेकिन अर्जुन की समझ में आ गई बात, इसलिए उसने युद्ध तो किया लेकिन निष्काम होकर किया। इस युद्ध का क्या नतीजा निकलना है मेरा से कोई वास्ता नहीं है, ये प्रभु मालिक है। जीतूंगा या हारूंगा ये भी प्रभु मालिक है, मेरा जीतने हारने से कोई संबंध नहीं है। तो उसने युद्ध रूपी क्रिया तो की लेकिन सब कुछ ईश्वर हुक्म में देखा। तो हमसे भी यही आशा की जाती है कि तू जब प्रभु का स्मरण करेगा तो संसार चक्र को ईश्वर हुक्म में चलता हुआ जानेगा। ये भाव तेरे अंदर होना चाहिए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हाय ये नहीं हो पाया, हाय वो नहीं हो पाया, ये जो मैं रात दिन सोचता रहता हूं कि मेरे अंदर देह परायणता है, ईश्वर परायणता नहीं है। मेरी लाइफ ईश्वर पर डिपेंड नहीं कर रही है, अपने पर डिपेंड कर रही है। इसीलिए जब तू सब कुछ करने वाला तू ही है, तो महाराज जी कहते हैं प्रेमी जब करने वाला तू है तो भोगने वाला भी तू ही है। भले ही तुझसे जो गलती हो रही है वो ईश्वर की प्रेरणा से ही हो रही हो, प्रेरणा का मतलब है तेरे प्रारब्ध के कारण हो रही हो, क्योंकि जो कर्म देह से होना है वो होके रहेगा, लेकिन तेरे अंदर कर्तापन है, तुझे तेरे अंदर भाव है करते वक्त कि मैंने किया है, तो फिर तू फल भी तू ही भोगेगा। यदि तेरे अंदर भाव यह है कि प्रभु ने, प्रभु मैं तो मजबूर हूं, ये देह तो मजबूर है, प्रारब्ध के अधीन है अर्थात आपके अधीन है, इससे जो हो रहा है ये आपके हुक्म में हो रहा है, ये तेरे अंदर ये भाव है और तेरा उस फल से कोई लेना देना नहीं है, ना तुझे सुख चाहिए ना तुझे दुख चाहिए, तो प्रभु मालिक भी है सर। तो इसीलिए सत्पुरुषों के द्वारा जो कर्म होते हैं देह से, उसके फल का बंधन सत्पुरुष को नहीं होता, इसलिए कर्म करने के बाद भी वो मुक्त रहते हैं। हम कर्म करने के बाद बंधन में आ जाते हैं कर्म फल, क्योंकि मेरे अंदर कर्तापन है। इसलिए सिमरन में भी सफलता चाहिए, सिमरन में भी सिमरन आप चाहते हो चैन से सिमरन करना, तो आपके अंदर ईश्वर परायणता लाजमी होनी चाहिए, अर्थात ये जो कुछ भी जीवन लीला है ये प्रभु के अधीन है, जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाए। ये बात बिल्कुल शत प्रतिशत सत्य है, लेकिन इस पर विश्वास करके तो हमारा दिल दह जाएगा, दिल दह जाएगा। इसीलिए कहने को हम कहते हैं हाँ साहब मानता हूं ये बात, लेकिन इस पर विश्वास आने में हो सकता है आपको 10 साल लग जाए, हो सकता है 20 साल लग जाए, हो सकता है सारी आयु लग जाए। तो वाणी की बातें बिल्कुल सत्य होती है, शास्त्रों की जितनी बातें हैं बिल्कुल 100% सत्य होती हैं, लेकिन उस पर हमारा विश्वास आना, उसके अनुसार अमल करना, ये लंबी प्रक्रिया है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। और जो इसीलिए गुरु ने 5 नियम करके आपको सिस्टम दिया जीने का, तो उसके अनुसार जीवन जियो। और जो कहा उन्होंने कि कम से कम लिख के दिया समता विलास में कि 15 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा सायकाल सिमरन करना लाजमी है, कंपलसरी है, चॉइस तो है ही नहीं। हम चॉइस क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वासना इतनी बढ़ा ली है हमने कि टाइम हमारे लिए छोटा पड़ जाता है, 24 घंटे का टाइम भी हमारे लिए छोटा पड़ जाता है। सोचते ये है कि काश 48 घंटे का दिन होता तो माया में और इकट्ठी कर लेता। तो ऐसी मूर्खता हम पहले ही कर चुके हैं, आगे तो कम से कम गुरु के अनुसार जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें, क्योंकि गुरु स्वार्थी नहीं है आपका, गुरु मोक्षदायक है, आनंददायक है, सारी चिंता से आपको मुक्त करने वाला है, दुखों से मुक्त करने वाला है। उसकी बात तो माने कम से कम। घर के लोग तो अपने अपने स्वार्थ में सोचते हैं, अपने सुख के लिए आपको याद करते हैं कि आप रहोगे तो हमको सुख मिलेगा, आप संसार से चले गए तो हम तो दुखी हो जाएंगे, तो सुख के कारण आपको चाहते हैं वो। गुरु सुख के कारण आपको नहीं चाहता, गुरु आपके दुख को देखता है, उसको जानता है, इसलिए आपके मन का दुख को निवृत्त करना चाहता है, इसलिए आपको कहता है कि तू मेरी बात मान। इसलिए गुरु की बात तो माने, बहुत दिन संसार की बात मान के चल दिए अंधेरे में, अब गुरु की बात के प्रकाश में चलना सीखे, देखिए आपका सिरवन मन लगता है नहीं लगता है, जरूर लगे। एक और बाधा आती है, ये सारी सिमरन की ही बाधाएं हैं। हमारे अंदर संसार के सुखों को भोगने के प्रति बड़ी आसक्ति है, गहरी आसक्ति है। तो जब सिमरन करने बैठते हैं तो उन वस्तुओं के रस याद आते हैं, उनकी योजना याद आती है कि कैसे मिलेंगे। मुझे याद है 77 में जब मैं यहां पहली बार आया था तपोभूमि में, तो 15 दिन की छुट्टी लेके आया था, डिफेंस में था मैं दिल्ली में उस समय। जब सिमरन करने बैठता था तो दिल्ली में मन पहुंच जाता था, पिक्चर देखते तो पिक्चर की याद आती थी, कहीं घूमने जाते थे वो दृश्य याद आते थे, बीवी बच्चों की याद आ जाती थी, क्योंकि सबसे सुख मिलता है। लेकिन जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, जब 10-20 साल निकल गए, क्योंकि यहां 1 महीने के लिए मैं साल में आया करता था, तो मैंने देखा कि मन के अंदर एक परिवर्तन हो गया। पहले के मुकाबले में एक परिवर्तन आ गया। पहले मन जब भोगों की तरह भागता था तो ईश्वर की याद पूरी तरह से गायब हो जाती थी, ये भी भूल जाते थे कि सिमरन करने बैठे हुए। हालत ये हो जाती थी जैसे रात का स्वप्न देखते ना आदमी, तो शरीर को भूल जाता है कहाँ पड़ा हुआ है, तो वही हालत जाती थी कहाँ बैठे हुए हैं, मन पूरी तरह से ले गया दिल्ली को। लेकिन 10-20 साल बाद क्या स्थिति हो गई, मन में वो संकल्प तो आते थे लेकिन उसके अंदर का अट्रैक्शन गायब हो गया था, क्योंकि विचार करते करते, शास्त्रों का मनन करते करते, गुरु की बातों का मनन करते करते, मन के अंदर उनके संस्कार गहरे हो गए थे, इसलिए उन भोगों में दोष क्या है मन उस दोष को भी याद साथ साथ कर लेता था। मिठाई की याद आ रही है तो साथ साथ उसका दोष भी याद आ जाता था कि यदि इसका सेवन किया तो शुगर तेरी कहां पहुंच जाएगी, याद कर लेते थे। तेरा जो प्रिय शरीर है ना, यही खतरे में पड़ जाएगा, तो स्वाद के साथ उसका दोष भी याद आ रहा है। तो धीरे धीरे उसका अट्रैक्शन जो है वो भोगों का कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। तो ये जो है, जब तक आपके अंदर विवेक कायम नहीं रहेगा, ये काम विवेक के बल पर होता है। भोगों के प्रति खिंचाव, संपत्ति के प्रति खिंचाव, लोगों के प्रति जो अट्रैक्शन तेरे अंदर बना हुआ है, क्योंकि उनसे सुख मिलता है ना तुझे, लोगों में कोई अट्रैक्शन नहीं है, उनसे जो सुख मिलता है अट्रैक्शन उस चीज का है। तो इसीलिए जब आपकी बुद्धि में विवेक कायम रहता है, विवेक कहां से आता है, गुरु के वचनों का गहरा स्वाध्याय करने से विवेक आता है। जो गुरु लिख रहा है, जैसा कि कल प्रश्न आ रहा था कि समता नीति का जो उल्लंघन करेगा देश वो बर्बाद हो जाएगा, जो मनुष्य उल्लंघन करेगा उसका वो बर्बाद हो जाएगा। तो समता नीति क्या है फिर? ईश्वर की तरफ चलना, उसके लिए जीना, उसमें जो चीज सहायक हो, चाहे वो गृहस्थ जीवन है, चाहे वो सामाजिक जीवन है, चाहे वो पूरे देश का जीवन है, चाहे विश्व का जीवन है, इस प्रकार का जीवन होना चाहिए जो ईश्वर की ओर ले जाने में सहायक हो, वो समता नीति हुई। और इसके विरुद्ध जो विकास है, इसके विरुद्ध जो दुनिया का चलन है, वो है भोग नीति, वो है भोगवादी जीवन, उसको कहते हैं मेटीरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, ये नाम दिए गए ना उसको, कंज्यूमर कल्चर। तो ये तो कल आपने दृश्य सुन लिया कैसे संसार को बर्बाद करती है, और जो देश इसमें फंसा गहरे भोगवाद में, उसका कैसी बर्बादी हुई, सारा इतिहास गवाह है इस बात का। इसीलिए जो ये तीसरी बाधा है, जो हमारे इंद्रियों के मन के जो अट्रैक्शंस हैं, इसकी तरफ हमारा ध्यान खींच जाता है, भोगों की तरफ, ये विवेक बल से, जो कि सत्संग के से, ग्रंथों के स्वाध्याय से, सत्पुरुषों की बातों के स्वाध्याय से, और उनके प्रकाश में इस संसार को देखने से, वो विवेक आपकी बुद्धि में कायम रहता है, जो आपको भोगों के अट्रैक्शन से मुक्त रखता है या उसमें फंसने नहीं देता, उसको मर्यादा में रखता है। तो इसीलिए ये जो बाधाएं हैं, इन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करें गुरु ज्ञान के द्वारा, तब जाकर हम देखेंगे कि हमारा सिमरन में मन लगता है और सफलता मिलती है। ओम ब्रह्म सत्यम।